नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक के कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम दमन जाएंगे। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BAS को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।
हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। पुरुष हॉकी अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।